कन्वेंशन सेंटर।
स्वीट महल वाले आदा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 to 700 तक की कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब। स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनियंटली लोकेटेड इन बॉन। हुणे कॉल करो आते अपनिया पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191।
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर।
इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। इंसान अपनी जिंदगी में दो आम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और आदाब सब सुनने वालों को। सामाइन, हर बुध को 3 से 4 बजे आप प्रोग्राम सुनते हैं और देखते हैं कारोबारी दुनिया और हमारी दुनिया के हवाले से। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्गेज और रियल इस्टेट की इन्फॉर्मेशन आपके कानों तक पहुँचाई जाए ताकि आपको एक बड़ा फैसला करने में आसानी हो। और जैसा कि आपको पता है कि आज कल जो यहाँ पर सिचुएशन कनाडा में चल रही है वो इस वक्त लोगों को एक कंफ्यूजन है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहाँ जा रही हैं। एक तो ज़माना था जो बढ़ते ही चली जा रही थी प्राइसेस, यानी 25 से 32% का अप्रिसिएशन भी हमने देखा और महीनों के अंदर एकदम से करेक्शन भी आना शुरू हो गई। तो ये जो एक सिचुएशन हुई हुई है, लोगों के जहनों में एक तनाव है, दबाव है, सोच है, फिक्र है कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, मॉर्गेज के रेट्स कहाँ जाएंगे। बहरहाल आज हमने अपना प्रोग्राम इसी हवाले से तरतीब दिया है और इस शोबे से, कैनेडियन हाउसिंग फाइनेंस के शोबे से जो भी मेन प्लेयर खिलाड़ी होते हैं आज हमने स्टूडियो में उनको दावत दी हुई है। हमारे साथ होम लाइफ सुपरस्टार के सुपरस्टार आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं, रियल एस्टेट एजेंट। और हमारे साथ इस वक्त मैं समझता हूं जो ऑसगेड एक बहुत बड़ा इदारा है, यूनिवर्सिटी है हमारे कनाडा में, उससे जिसने लॉ की डिग्री ले ली तो उसको समझा जाता है कि वो सबसे बड़ा चैंपियन है। और इस वक्त हमारे साथ बड़े मशहूर और मारूफ लॉयर वकील हजरत साहब भी मौजूद हैं और उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। तो हाफिज मोहम्मद अली खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आसिफ जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उन दोनों को हम पहले तो सलाम अलैकुम करते हैं।
वालेकुम सलाम।
हमारे साथ आप दोनों रहिएगा, हमारा प्रोग्राम सामाइन आप भी सुनते रहिएगा। आज इन लोगों से हम बहुत मालूमात आपके कानों तक पहुंचाएंगे क्योंकि दोनों अपने अपने शोबों पर बड़ी गहरी नजर रखते हैं, बड़ी गहरा तजुर्बा रखते हैं और अपने इनके तजुर्बे से हम भी फायदा उठाएंगे। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम के हस्ब दस्तूर सबसे पहले चलते हैं मॉर्गेज रेट्स की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि साहब 2 हफ्ते बाद बैंक ऑफ कनाडा या तो 0.75 इंक्रीज करेगा या 0.50 इंक्रीज करेगा क्योंकि वो अपने मुंह से कह चुका है। और जब ये बोल देते हैं तो इनका ये होता है कि इनको बढ़ाना ही है। यूएस में भी इस वक्त जो मॉर्गेज के रेट्स हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं और यहाँ पे इस वक्त 3.70 प्राइम रेट है और अगर ये 0.50 बढ़ाएंगे तो 4.20 हो जाएगा और अगर 75 बेसिस यानी 0.75 बढ़ाएंगे तो ये मजीद आप समझते हैं कि ये कहाँ चला जाएगा। और आपका जो इस वक्त फिक्स वेरिएबल रेट पे जो दो किस्म के रेट्स हो गए, एक हो गए इंश्योर्ड जो CMSC के रेट्स होते हैं, इंश्योर्ड डील होती है उस पर रेट डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। क्यों? इसलिए कि वो इंश्योर्ड होते हैं, उसका प्रीमियम आप दे रहे होते हैं, बैंक्स को सुकून होता है तो इसलिए उस पर वो प्रीमियम आपको डिस्काउंट फैक्टर ज़्यादा दे रहे हैं। दूसरे रेट्स होते हैं अनइंश्योर्ड, उस पे जो आपको इस वक्त रेट डिस्काउंट मिल रहा है वो है प्राइम माइनस 40, तो आपका रेट हो जाएगा 3.30 3.70 क्या है, प्राइम रेट 0.40 माइनस होगा तो आपका रेट हो जाएगा 3.30। ये उन लोगों के लिए है जो अनइंश्योर्ड मॉर्गेज ले रहे हैं, यानी 20% डाउन के साथ, या रीफाइनेंस कर रहे हैं, तो ये उनका रेट हो जाएगा। लेकिन अगर कोई अनइंश्योर्ड इंश्योर्ड कोई ले रहा है, यानी सीएमएससी से जा रहा है, तो उनका रेट इस वक्त चल रहा है 2.80। उनको डीप डिस्काउंट मिल रहा है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी इंश्योर्ड है, 25 साल का एमोर्टाइजेशन होगा उस पर, वो प्रीमियम भी जाहिर बात है इंश्योरेंस का देते हैं, तो उनको रेट डिस्काउंट इस वक्त ज्यादा मिल रहा है। अब ये सवाल, और फिक्स रेट क्या चल रहे हैं, इसका 4.49 जो है वो 5 साल का फिक्स चल रहा है। अभी जब बढ़ावा आएगा प्रॉपर्टी के इसमें, सॉरी मॉर्गेज के रेट्स में, तो आप देखेंगे कि फिक्स रेट और ऊपर चले जाएंगे। डिस्काउंट फैक्टर ये 2 हफ्ते बाद बैंक डिसाइड करेंगे, या तो मजीद देना है उनको या उसको और भी गैप को कम करना है, ये हमें 2 हफ्ते बाद खबरें आना पता चल जाएंगी, हम आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम आप सुनते रहिए सैयद आसिफ रजा का, मुझसे राबते का नंबर है 416-427-8655। हमारे साथ रहिएगा, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। इंसान अपनी जिंदगी में 2 आम फैसले करता है, एक घरवाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है, और मॉर्गेज के लिए आप कांटेक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है, और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी जामीन, आइए हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ जो हमें टैक्स पर आया हुआ था। वो यही सवाल था कि पहले भी हम इस सवाल को ले चुके हैं कि माँ बाप के साथ दोनों बच्चे डील पर हैं, और वो चाहते हैं कि बच्चों का नाम उस डील में से हटा दिया जाए, और ताकि माँ बाप के नाम पूरा मॉर्गेज हो जाए। उसके लिए आपको एक तो सबसे पहले भाई साहब जो भी हैं, आपको चाहिए कि आप अपने बैंक से मालूम करें कि वो बच्चों को नाम हटाने के लिए आपका अगर वो बैंक इजाज़त देता है, क्योंकि आपने वो ऐड क्यों किया था। वो ऐड आपने इसलिए किया था कि आपकी कैपेसिटी टू पे कम थी, आप इनकम आपका लेवल कम था, बच्चों की इनकम ज़्यादा थी, तो आपने उनको ऐड कर दिया था। अगर आप उसको हटाना चाहते हैं रीफाइनेंस करके, या वैसे ही हटाना चाहते हैं, तो वकील एक तो इन्वॉल्व होगा इसमें, और आपको बैंक से इजाजत लेनी पड़ेगी। उसके साथ हमारे साथ आज वकील साहब भी हैं, उनसे भी यह सवाल आपको साथ मैं शेयर करूंगा, वो भी अपनी महाराना राय देंगे। सबसे पहले हम चलते हैं होम लाइफ सुपरस्टार के जावेद साहब के पास, जो मैं समझता हूं कि बड़ा नाम है। आसिफ जावेद, आप एक तजिया निगार भी हैं, आप एक एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ साथ आप एक रियल एस्टेट एजेंट भी। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम जनाब,
बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने टाइम दिया हमारे साथ।
आपकी कर्म नवाजी है, आपने याद किया।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। सर ये बताएं सबसे पहले आपकी नजर में, हमारे नाज़रीन और सामाइन को, कि रियल एस्टेट मार्केट जा कहां रही है।
देखिए, जो रियल एस्टेट मार्केट में इस वक्त करेक्शन हो रहा है, वो ये एक तरीके से अल्लाह की रहमत है।
अच्छा
जी, ये एक तरह की सॉफ्ट लैंडिंग है, वरना अगर जिस तरीके से मार्केट जा रही थी, जो मार्केट जो प्राइसेस एस्केलेशन हो रहा था, डर था कि कहीं मार्केट क्रैश ना कर जाए, एक वक्त ऐसा है।
करेक्ट।
तो गवर्नमेंट ने सही मेजर्स लिए और जो सॉफ्ट लैंडिंग के इकदाम किए। तो देखिए, एक वक्त था अब से तकरीबन आप समझ लें 5-6 महीने पहले, कि फर्स्ट टाइम होम बायर और स्टार्टर फैमिलीज वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी रियल एस्टेट मार्केट में हाथ डालने का।
करेक्ट।
और लोग बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे इस मार्केट में। जो सबसे ज्यादा ट्रावल था वो बिडर्स का मामला जो था, वो एक घर के ऊपर 20-20 ऑफर्स आती थी, और बड़ी ये अनएक्सपेक्टेड प्राइसेस जो है वो बढ़ जाया करते थे, और लोग घरों की होम इंस्पेक्शन भी नहीं करवा पाते थे, और एक पैनिक था, ऐसा लग रहा था जैसे कयामत आई हुई है। और उस सिचुएशन को खत्म होना ही था, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। बहरहाल, जो मार्केट है इस वक्त वो बेहतरी की तरफ जा रही है, और उम्मीद करते हैं कि अभी और भी ज्यादा प्राइसेस में स्टेबिलिटी आएगी, और प्राइसेस जो है वो अभी जैसे अभी बैंक ऑफ कनाडा इंटरेस्ट का रेट बढ़ा रहा है तो इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने के बाद मार्केट में और भी ज्यादा आप देखिएगा कीमतों के ऊपर कमी आएगी और मार्केट स्टेबल होगी।
वेरी गुड,
ये बेहतर है,
बेहतर हो रहा है आपके हिसाब से। अच्छा, आप ये बताएंगे कि ये जो जीटीए के अंदर तो प्राइसेस अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई टाउन हाउस या सेमी रिटायर्ड जो है वो मिलियन से और मिलियन से ऊपर टच कर रहा है।
जी जी,
ठीक है ना। अगर किसी को इतना पर नहीं लेना हो, कम मालियत का, कहां पे आप रेकमेंड करेंगे इस वक्त?
देखिए, जीटीए से एक से डेढ़ घंटे की ड्राइव के ऊपर जो छोटे छोटे टाउन्स हैं वहां अभी भी जो घरों की कीमतें हैं वो उनकी सूरत हाल काफी बेहतर है।
ठीक।
और लोगों को चाहिए कि अब वो जीटीए से बाहर निकलकर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में और अपनी अपनी रेजिडेंस के बारे में वहां पर तवज्जो दें, क्योंकि वहां प्राइसेस अभी भी जो है वो लोगों की पहुंच में है।
हमारे न्यू इमिग्रेंट जो आए हुए हैं, कोई भी ऐसे टाउन्स दो तीन बताएं जो आप समझते हैं कि जो इस वक्त बाय लो एंड हाई जो जाएंगे, जिन पे आपकी गहरी नजर हो।
देखिए, बाय लो वाली सिचुएशन तो इस वक्त कहीं पर भी नहीं।
ठीक है,
ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि कहीं पर जीटीए से आप बाहर जाएंगे तो वहां पे बाई लो है। कीमतें हर जगह बढ़ी हैं। जीटीए से बाहर 400 किलोमीटर की रेंज के अंदर हर जगह कीमतें जो हैं वो बढ़ी हैं। इवन आप देखिए कि लंदन, ओंटारियो, विंडसर जैसे इलाकों में कीमतें जो हैं 1 मिलियन से ऊपर चली गई मकानों की।
ठीक है,
जबकि पेंडेमिक से पहले यही कीमतें 5 से 6 लाख के दरमियान थी। तो जो तो अभी ये बाई लो और सेल हाई वाली जो है सिचुएशन
नहीं, लेकिन अभी अगर मिलियन का कोई नहीं लेना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे, तो अगर एक डेढ़ घंटे की मुसावत करके जाते भी हैं, सफर करके जाते भी हैं, वहां रहना कर पाते हैं, क्या उनकी आएगी आपके पास, क्या आप वहां पर घरों की अवेलेबिलिटी?
देखिए, अभी भी अगर आप एमएलएस पे सर्च करें तो अभी भी 6 से 7 लाख की रेंज के अंदर डिटैच घर जो है वो आपको काफी लिस्टिंग्स मिल जाएगी।
6 से 7 लाख?
जी
जी, वेरी गुड। सामीन, जैसा कि आसिफ जावेद साहब ने कहा कि इनके पास ऐसे कुछ घर हैं जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं फ्यूचर में, आपका नंबर जरा सर बता दें।
मेरा नंबर है 416-318-4156
पे कॉल कर सकते हैं। आइए साहब, एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और फिर हम अपने वकील साहब के पास चलते हैं। थोड़े से मेरे पास ऐसे क्वेश्चन भी आए हुए हैं लोगों के जो इनसे इनके प्रोफेशन से रिलेटेड हैं। जी, इंसान अपनी जिंदगी में दो अहम फैसले करता है, एक घर वाली का और एक घर खरीदने का। घर खरीदने के लिए आपको मॉर्गेज चाहिए होता है और मॉर्गेज के लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। अगर आपका क्रेडिट खराब है, न्यू इमिग्रेंट है या आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तब भी आपको मॉर्गेज मिल सकता है और कॉल कीजिए मॉर्गेज प्रोफेशनल सैयद आसिफ रजा 416-427-8655। जी सामिन, प्रोग्राम आप सुन रहे हैं सैयद आसिफ रजा का, मुझसे रबते का नंबर है 416-427-8655। मेरे पास बहुत से सवाल आते हैं कि आसिफ भाई, हम 70 साल के हो गए हैं, हम रिटायर्ड हो गए हैं, या हम अभी आए हैं, हमारे पास आमदनी नहीं है। तो आप मेरे प्रोग्राम सुनते रहते हैं, हम आपको प्रोडक्ट बताते रहते हैं। अभी भी जो लोग रिटायर्ड हो गए हैं या उन्होंने वेल्थ अक्यूमुलेट कर ली है, तो एक प्रोग्राम आया हुआ है एक बैंक्स का कि जिसमें वो कहते हैं कि अगर आपके पास $2.5 लाख की सेविंग है और 35% का आप घर खरीद रहे हैं, 2.5 लाख आपके पास अलग सेविंग्स होनी चाहिए, 35% का घर खरीद रहे हैं, तो आपको इनकम जीरो पर और अच्छा वेरिएबल रेट मिल जाएगा, आपको कोई इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसकी शर्त क्या है कि आपके पास $2.5 लाख लिक्विड सिचुएशन में कैनेडियन किसी भी बैंक में पड़े हुए हों। वो ब्लॉक नहीं करते, ना वो लॉक करते हैं, ना उस पर कोई सिक्योरिटी का चार्ज लगाते हैं, बस सिर्फ वो देखते हैं कि आपके पास सेविंग्स हैं और आप 35% उसके अलावा आपके पास हैं जो आप डाउन पेमेंट देके घर खरीद रहे हैं, कि आप अगर खुद उनको ये होती है कि आप करेंगे तो आपके पास पैसे हैं कि अपने आप को आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसमें जैसे रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी क्या इनकम है, NOA पे क्या है, T4 पे क्या है, वो सब कुछ नहीं चाहिए होती, वो जीरो डॉलर, लेकिन आपके पास सेविंग जरूर होना चाहिए। एक तो ये उन लोगों के लिए प्रोडक्ट हो गई जिनके पास इनकम नहीं है लेकिन वो फिर भी ए लेंडर से घर ले सकते हैं। नंबर टू प्रोडक्ट है जो न्यू इमिग्रेंट आए हुए हैं, अभी 6 महीने हुए आए हुए हैं, कोई इनकम नहीं है, कहीं जॉब नहीं लगी, लेकिन उनके पास 2 साल की अगर आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट बन रही है $2,000, तो $24,000 आपके पास पड़े हुए हों किसी भी बैंक में, उसके अलावा 35% पर आप घर खरीद रहे हो, तो आपको इनकम दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप कहेंगे हाँ 5 और 10-15% पे खरीद रहे हैं, तो फिर आपको इनकम दिखाने की जरूरत है, वो फिर आप CMSC आपकी डील अप्रूव करती है, उसके लिए आपको पूरे आपके बैंक स्टेटमेंट में आपकी पेरोल जा रही हो और ये सब वो बैंक देखता है। मजीद मालूमात के लिए आप मुझे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं, 416-427-8655 मुझसे रबते का नंबर है। आइए सामीन, आइए चलते हैं हमारे इस वक्त, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली खोसा साहब। खोसा साहब यहाँ पे एक बड़े नामवर वकील हैं और काफी अरसे दराज से यहाँ काम कर रहे हैं। इनके पास टाइम, आप यकीन करें बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम निकाला है, हमने आज इनको यहाँ लेकर आए हैं, वरना इनका एक पांव ऑटवा में एक पांव यहाँ पर बस ऐसे ही चल लगा रहे। जी सर, कैसे मिजाज हैं?
जरा नवाजी है, मैं इंतहाई मशकूर हूँ।
नहीं सर, आपने अच्छा खोसा साहब ये बताइए कि अमूमन देखा जाता है कि लोग घर खरीदने के बाद मॉर्गेज लेने के बाद इंस्ट्रक्शंस आपके पास आती हैं, साइन कराने आते हैं आपके पास आते हैं बनफ्से नफीस, उसमें आमतौर पर यह देखा गया है कि उनके नाम अगर कोई चीज ऐसी निकल आती है, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम है कंप्यूटराइज, सैयद अली किसी का नाम है, सिद्दीकी मोहम्मद सिद्दीकी एक कॉमन नेम्स जो होते हैं, उसमें उनके नाम जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो ज़रा हमारे सामाइन को बताइए और कैसे हल की जा सकती हैं।
जी मैं इस सिलसिले में ये गुजारिश करूंगा कि वाकई सम टाइम ऐसा होता है और प्रॉब्लम क्रिएट होती है,
यानी उनके नाम कुछ और ऐसी चीज लिटिगेशन निकल आता है जो उनका नहीं होता।
जी उसमें ये होता है कि हमारा जो LRO का जो सिस्टम है ना,
LRO क्या चीज़ है?
मतलब लैंड रेवेन्यू ऑफिस जहाँ हम जाते हैं
ठीक है
ट्रांसफर करने या मॉर्गेज जो भी चीज़ रजिस्टर करते हैं, तो उसमें उनका जो डिनोमिनेटर है ना वो सिर्फ 2 चीज़ें पिक करता है।
ठीक है,
और जिस तरह आपने फरमाया ना कि हमारे कॉमन नेम है, मिसाल के तौर पर
मोहम्मद खान है,
मोहम्मद जो है ये कॉमन नेम
है,
खान जो है ना ये कॉमन नेम है, अगर हमने उनके 3 मतलब लफ्ज लिखे हैं, फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है, अगर 2 में से कॉमन आते तो वो उसको पिक कर लेता है।
अच्छा,
अब उसका प्रॉब्लम ये होता है कि सम टाइम ऐसा होता है कि उन लोगों की शादी नहीं हुई होती, लेकिन जब हम देखते हैं तो फैमिली रिस्पांसिबिलिटी ऑफिस की तरफ से उनके ऊपर कुछ ना कुछ आ जाता है,
यानी बैचलर होते हैं,
बैचलर
वाकई में होते हैं, बैचलर
हाँ वाकई में होते हैं।
अच्छा,
तो अब उसका मसला ये है कि फिर हमें सिमिलर नेम जो है ना उसमें जो गवर्नमेंट है ना उन्होंने हर लॉयर को ये इख्तियार दिया हुआ है कि अगर वो 50,000 तक का है तो वो लॉयर अगर ये समझता है और उनसे वो बात करके उन्हें यकीन हो जाता है तो वो ये कह देता है कि अंडर 50,000 है तो वो उसको खुद क्लियर कर सकता है उनसे एफिडेविट लेके।
अच्छा, यानी आपके कंट्रोल में
ये इनके कंट्रोल में है, लेकिन ज्यादातर जो है ना 50,000 से ज्यादा होते हैं।
अच्छा,
तो जब वो 50,000 से ज्यादा होता है तो बाकायदा फिर हमें जो भी है उसकी सर्च करनी पड़ती है, फिर जिन लोगों ने या जिस पार्टी ने उनको रजिस्टर कराया हुआ है उनके खिलाफ, फिर हम उनके लायर से रब्ता करते हैं, फिर हम उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन भिजवाते हैं कि जनाब हमारा जो क्लाइंट है ना उसका नाम ये है, उसमें सिर्फ 2 नाम मिल रहे हैं लेकिन बाकी जो नाम है मिडिल ये मुख्तलिफ है, तो इसलिए ही इज नॉट द सेम पर्सन, फिर हम उसे कहते हैं कि सिमिलर नेम का जो हम एफिडेविट तैयार करते हैं, फिर जो दूसरे लायर हैं फिर वो उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं, मिसाल के तौर पे हम उनके आईडीज जब उन्हें भिजवाते हैं तो वो ये देखते हैं कि ये उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है जो उनकी थी जो असल पार्टी है, तो इस हवाले से ही होते हैं, बट इट टेक्स टाइम। उसका बेहतरीन हल ये है कि जब भी आप लें तो सबसे पहले हमारे जो लायर हजरात हैं वो भी और क्लाइंट भी ये दे शुड मेक इट श्योर कि उनके जो नाम है वो सिमिलर नेम के उसमें नहीं आते, क्यों अगर वो आ भी जाए ना तो फिर चूंकि उन्हें वक्त मिल जाता है वो इस चीज को जो है ना हैंडल कर सकते हैं इजीली।
तो यानी लास्ट मिनट पर अपने इंस्ट्रक्शन या क्लोजिंग को मत रखें, साइनिंग जो है ये पहले से शुरू कर दें काम।
एग्जैक्टली, जब आपने परचेज किया तो मेरे ख्याल है बेहतर तरीका यही होगा कि आप जो है ना यू शुड हायर अ लॉयर, जब आप लायर के पास देते हैं तो वो यूजुअली पहले सर्च कर लेते हैं।
ओके,
तो फिर उसको डील भी कर लेते हैं, उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई आप यही हैं, आप यहाँ रहे थे, आपकी डेट ऑफ बर्थ सारी चीज़ें, तो वो बहुत अच्छा रहता है हर एक के लिए कि मतलब लास्ट टाइम जो है ना एक प्रॉब्लम हो जाती है उससे
लास्ट मिनट पर आप आए, आपने एक दिन पहले दो दिन पहले अभी क्लोजिंग है, घर बिक रहा है और मालूम है कोई नाम निकल आया और आप लोगों की कॉरेस्पॉन्डेंस में टाइम लग गया और वो जो है फिर क्लोजिंग की डेट उसकी निकल सकती है या डिले हो सकती है।
एग्जैक्टली,
तो इसलिए बेहतर यह है कि वकील को जैसे ही आप घर खरीदने का सोचें या कर ले रहे हो या अग्रीमेंट पे जाएं तो फौरन वकील को हायर करके अपनी सारा सर्च वगैरह करा के इंटैक्ट कर लें कि जो अभी जैसे वकील साहब ने बताया कि कहीं कॉमन नेम की वजह से सिस्टम की ग्लिच की वजह से आपके ऊपर नाम पे कोई ऐसी चीज ना आ रही हो, अगर आ भी रही होगी क्योंकि सेम नेम है तो वो वकील साहब उसको क्लियर करा सकें बिफोर आपकी क्लोजिंग डेट के। साहब आइए हम चलते हैं अपने दो स्पॉन्सर की तरफ, यहां पे हम वकील साहब से और भी बातचीत करेंगे लेकिन अपने स्पॉन्सर को बता दें नेचर्स मिक्स। नेचर्स मिक्स आपका जान है तो जहान है, यानी नेचर्स मिक्स एक ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्स्ट्रा वर्जन ऑलिव ऑयल से बेक होती है, आमिश कम्युनिटी वाटरलू किचनर से ओट्स हनी एंड मेपल सिरप खरीदा जाता है और यही कैम्ब्रिज की फैक्ट्री में ये बनती है। आपकी कैनेडियन प्रोडक्ट है, वेरी हेल्दी, आप इसको लें, रेडी टू ईट है इसको, आप इसको कहते हैं ग्रनोला मिक्स, नेचर्स मिक्स का ग्रनोला मिक्स। ये अमेजोन, सोबीज, मेट्रो, लॉबलॉज और फ्रेशको यहाँ अपने देसी स्टोर में, इकबाल फूड, मिसिसागा और स्कारब्रो में भी मौजूद है। इसके अलावा ये अमेजोन यूएस कैनेडा में भी है, बहुत जल्दी न्यूजीलैंड, यूके और ऑस्ट्रेलिया के अमेजोन में भी आने वाला है और आप इसको दुबई में भी ये इस वक्त वहां पे भी मिल रहा है। अगर लोग हमारा प्रोग्राम जो देख रहे हैं इंटरनेट के जरिए या आईपीटीवी के जरिए वो ये वहां से भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। इन्हीं के स्पॉन्सर जो जॉन साहब हैं उनकी एक फरमाइश पे एक हम लगाते हैं कवाली, नुसरत फतेह अली की उनकी फरमाइश थी जो ओनर इसके पार्टनर हैं। आइए हम एक सुनते हैं कवाली और फिर दोबारा प्रोग्राम में वापस आते हैं। پروگرامز دیکھ رہے ہیں سید اور سن رہے ہیں سید آصف رضا کا. مجھ سے رابطے کا نمبر ہے 416-427-8655. ہم اب دوسرے سیگمنٹ کی طرف بھی جانے والے ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت جو مہمان ہیں وہ سیاست پہ بھی کافی گہری نظر رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہم ان سے بات چیت کریں گے, کیونکہ جیسے میں نے جاوید صاحب کا بتایا تھا سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, کھوسا صاحب ایک وکیل بھی ہیں اور ساتھ پاکستان سے ان کے کافی جسے کہتے ہیں سیاسی گھرانے سے تعلقات بھی ہیں کھوسا صاحب کے, تو اس پہ بھی ہم ان کے گفتگو کریں گے. اور ہمارے ساتھ رہیے گا, مجھ سے میرا رابطے کا نمبر ہے 416-427-8655. آئیے صاحب آئیے چلتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, اور اس میں ہم جیسے گفتگو کرتے ہیں پہلے ایک کمرشل بریک لے لیتے ہیں اور پھر ہم اپنا دوسرا سیگمنٹ اسٹارٹ کرتے ہیں. انسان اپنی زندگی میں دو اہم فیصلے کرتا ہے, ایک گھر والی کا اور ایک گھر خریدنے کا. گھر خریدنے کے لیے آپ کو مارٹگیج چاہیے ہوتا ہے, اور مارٹگیج کے لیے آپ کانٹیکٹ کیجئے مارٹگیج پروفیشنل سید آصف رضا 416-427-8655. اگر آپ کا کریڈٹ خراب ہے, نیو امیگرینٹ ہے یا آپ سیلف امپلائڈ ہیں, تب بھی آپ کو مارٹگیج مل سکتا ہے, اور کال کیجئے مارٹگیج پروفیشنل سید آصف رضا 416-427-8655. آئیے صاحب ہم اپنے ملک پاکستان کی تھوڑی صورتحال کو دیکھ لیتے ہیں جو وہاں پہ اس وقت چل رہی ہے. پاکستان میں میں سمجھتا ہوں کہ دوا سے زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے. دعا ہمارا تو کامل یقین ہے کہ دعا جو ہے وہ کام کرتی ہے, اور اگر دل و لگن سے مانی جائے, اور ہمیں کفران نعمت جو ہیں جو ملتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان سے انکار نہیں کرنا چاہیے, ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. آج اسی کے اوپر ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سناتا ہوں. مرتضیٰ زیدی صاحب نے, اسکالر ہیں مولانا بھی ہیں, بڑی اچھی گفتگو کی, کیونکہ ان کا ایک پروگرام ہوتا ہے زاویہ, یہ ہمیشہ اس میں گفتگو کرتے ہیں اور بڑے اچھے خطیب بھی ہیں. آئیے ایک دو منٹ کا ہم ان کا پہلے سن لیتے ہیں کفران نعمت کے حوالے سے, اور پھر دوبارہ پروگرام میں واپس آتے ہیں.
کروں آپ کی خدمت میں. ہمارے ملک کی جو ٹوٹل ضرورت ہے بجلی کی, ایک ٹرمنالوجی میں اس کو ہم کہتے ہیں 24,000 میگا واٹ, 24,000 میگا واٹ پیک آرز میں. اس 24,000 میگا واٹ میں جو ابھی پچھلے سال تک ہمارے پاس کمی آتی تھی پیک آرز میں, وہ 8,000 میگا واٹ تھی. تو آپ سمجھ لیں کہ ہر شہر میں 8 گھنٹے بجلی جانا تو یقینی تھا ہی تھا. اب وہ یہ ہوگا کہ بڑے شہروں میں بجلی کم جائے گی, 8 گھنٹے سے کم گئی تو چھوٹے شہروں میں 8 گھنٹے سے زیادہ جائے گی, یہ ہو رہا تھا ہمارے ساتھ. تو ہماری ٹوٹل ضرورت 24,000 میگا واٹ تھی, جس کے لیے ہم پھنسے ہوئے ہیں. 30-35% پانی سے بناتے ہیں, باقی تقریباً 25-27% ہم گیس جلا کے بناتے ہیں, فیول سے بناتے ہیں, اور باقی کچھ فیصد نیوکلیئر فلاں فلاں سے بناتے ہیں. اب مزید کی بات ہمارے پاس یہ قابل افسوس, گلگت بلتستان میں جو صرف پانی ہے اس سے بجلی بننے کا پوٹینشیل 2,00,000 میگا واٹ ہے. یعنی ہم پاکستان کے برابر 10 ملکوں کو گلگت بلتستان کے پانی سے بجلی دے سکتے تھے. گلگت بلتستان اتنا امیر ہے یہ گلگتیوں بلتیوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا. البتہ گلگت بلتستان صرف اس میں امیر نہیں, اور بھی بہت سارے امیر ہیں یہ, لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ دنیا کے وہ امیر ہیں جو غریب ترین لوگ ہیں. خیر اس کی ایک کہانی علیحدہ. تو ہم اتنی ہے بجلی کی 24,000 میگا واٹ. گلگت بلتستان ہمیں 2,00,000 میگا واٹ پانی سے دے سکتے ہیں, پانی گرین انرجی ہے. لیکن اس میں ایک پرابلم ہے, اس میں پیسہ آئے گا کہاں سے؟ اگر ہم ملک سے چوری نہ کریں تو آ جائے گا, لیکن ظاہر ہے ہم نے چوری کرنی ہوتی ہے. تو جو ملک سے چوری کرنے والے ہیں ان کے پاس پیسہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بےچارے خود اپنی جیبوں کو بھر رہے ہوتے ہیں. تو اس خاطر ہمارے ڈیم نہیں بن رہے. ہمارے پاس ایک اور آپشن بھی تھا بھائی, ایسا ہے کہ ہمارے پاس ایک فینومینا ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ونڈ کوریڈور. ونڈ کوریڈور وہ کیسے؟ آج صبح ہی میں اور آپ کو ایک بہت سمپل لاجک پتا ہوتی ہے, وہ یہ کہ اگر کہیں پر گرم ہوا ہوتی ہے تو وہ اوپر جاتی ہے, اور ٹھنڈی ہوا اس جگہ کو فل کرتی ہے جہاں سے گرم ہوا اوپر جاتی ہے. تو آپ کراچی کو سوچئے, کراچی کے جنوب میں سمندر ہے جس پہ پانی کی وجہ سے ہوا نسبتاً ٹھنڈی ہوتی ہے. کراچی سے تھوڑے فاصلے پر تقریباً 200 کلومیٹر 250 کلومیٹر لے لیجئے ایک صحرا ہے. صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے. اچھا جیسے ہی صحرا میں ہوا گرم ہوتی ہے گرم ہوا اوپر جاتی ہے. جب گرم ہوا اوپر جاتی ہے تو وہ ویکیوم کریٹ کرتی ہے. یہ جو ویکیوم ہوتا ہے یہ ٹھنڈی ہوا اس کو بھرتی ہے. تو سمندر کی ہوا 200-250 کلومیٹر بھاگتی بھاگتی آتی ہے اس صحرا کی ہوا کے ویکیوم کو فل کرنے کے لیے. جب سمندر کی ہوا یہاں تک آتی ہے تو پھر گرم ہو جا کے اوپر جاتی ہے اور وہ پرماننٹ گرم رہتا ہے, یہ پرماننٹ ٹھنڈا رہتا ہے اور یہ ہوا چلتی رہتی ہے. تو یہ جو کراچی میں آپ کو بریز نظر آتی ہے سمندری ہوا, یہ اس وجہ سے نظر آتی ہے کیونکہ وہ صحرا اس کو گرم کرتا رہتا ہے اور وہ سمندر اس کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے اور گرم ہوا اوپر جاتی رہتی ہے ٹھنڈی ہوا آتی رہتی ہے. یہ جو ہوا چل کے وہاں تک جاتی ہے اس کا نام ہے ونڈ کوریڈور. ونڈ کوریڈور ہوا کی راہداری. یہ جو ونڈ کوریڈور ہوتا ہے یہ آئیڈیل ہوتا ہے ونڈ ٹربائنز لگانے کے لیے. یہاں پر اگر آپ ونڈ ٹربائنز لگائیں تو آپ کو ہمیشہ بجلی ملے گی. جب تک صحرا صحرا ہے, جب تک سمندر سمندر ہے, سمندر ٹھنڈا ہے صحرا گرم ہے, ہوا چلے گی اور بجلی بنے گی. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں 2-3 پرومیننٹ ہیں. یہ واقعا بڑی تکلیف دہ چیز ہے. سندھ میں جو ونڈ کوریڈورز ہیں ان کی بجلی کی پوٹینشلز 50,000 میگا واٹ ہے. صحیح ہے؟ تو اگر ہم صرف گلگت بلتستان کو لیں 2 لاکھ اور صرف سندھ اور بلوچستان کے ونڈ کوریڈورز کو لیں تو 50,000, تو ہمارے پاس 2.5 لاکھ میگا واٹ گرین انرجی کا پوٹینشل ہے اور ہمیں صرف 24,000 چاہیے جس کے لیے ہم 8 گھنٹے خوار ہو رہے ہیں. صحیح ہے؟ اچھا ابھی میں نے سورج کو کاؤنٹ کیا ہے کیا؟ نہیں. یورپین کنٹریز کہتے ہیں کہ اگر ایک سال میں 165 دن سورج نکل آئے تو سولر انرجی فیزیبل ہے. کراچی جیسے شہر میں 300 دن سورج نکلتا ہے. سولر انرجی کتنا فیزیبل ہے اللہ جانتا ہے, اور پورے پاکستان میں کتنا فیزیبل ہے بس خدا ہی جانتا ہے. لیکن کیا ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا؟ اس کو ہم کہتے ہیں کفران نعمت.
جی سامعین, آپ نے سنا. اور واقعی اگر ہم غور کریں ہمارے پاس ہوا پانی اور اللہ تعالیٰ نے سورج, اس سے ہم جنریٹ کر سکتے ہیں بجلی جو ہمارا ملک میں لوگ جو ہیں, جو ہمارے لیڈر حضرات ہیں, نہیں کر پا رہے. ہاں, اب میں پھر کہوں گا عمران خان ایک ایسے ویژنری آدمی تھے اور پرائم منسٹر تھے جو یہ چاہتے تھے ان سب چیزوں کو کیپچر کریں اور وہاں, کیونکہ ان کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا 3.5 سال نہ اتنی مہنگائی ہوئی اور نہ اتنا بجلی کا بحران دیکھا کہ 9-9, 10-10, 12-12 گھنٹے بجلی غائب ہے. جو لوگ کراچی سے آئے ہیں 3.5 سال اپنے یاد رکھیں, ہم بھی یاد رکھتے ہیں, اتنا شدید بحران نہیں آیا تھا جو آج کل آیا ہوا ہے. یہ سارا پیسے کا کھیل ہے. میں سمجھتا ہوں عمران خان کی جو حکومت کا جو دور تھا 3.5 سال, وہ 70 سال, یعنی اگر ہم پیچھے چلے جائیں, 40 سال چلے جائیں, ان کی بنائے ہوئے میس کو 3.5 سال میں اس نے بھی بڑی کوشش کر کے ریوائز کیا اور مثالی قوم بنا دیا, مثالی ایکسپورٹ کر دی, مثالی ریمیٹنس کر دیے. لیکن اب لوگ نہیں مانے, وہ ایک الگ بات ہے. اس پہ جاوید صاحب سے بات کرتے ہیں. جاوید صاحب, عمران خان کا زمانہ 3-3.5 سال کا اور یہ 2.5 مہینے کی جو مہنگائی ہے, اس کے اوپر کوئی آپ کا جواز بنتا ہے؟ کوئی ہے بات کرنے کی اس پہ؟
صورتحال ایسی نہیں ہے جیسی آپ بیان کر رہے ہیں.
جی بتائیے.
آپ نے کہا کہ 3.5 سال کا دور بڑا مثالی تھا, بالکل بھی مثالی دور نہیں تھا وہ.
اچھا,
تو یہ تو دیکھیے نا, اب ملک کی صورتحال کے اندر پہنچ گیا اور اب یہ
40 سال کی پہلے آپ بات نہیں کر رہے, ہم صرف 3.5 سال ہی کر رہے ہیں.
40 سال میں بہت اچھے اچھے ادوار بھی آئے ملک بہت.
مجھے ایک ادوار بتا دیے جو اچھا آیا ہو.
دیکھیے پھر آپ ناراض ہو جائیں گے.
نہیں نہیں, آپ سے میں پوچھ رہا ہوں, ایک ادوار بتا
دیجیے. ہوتا سلسلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کس دور میں ملک میں انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ ہوئی, اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی. آپ کو یاد ہوگا ایوب خان, دنیا کہتی ہے کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھا. بے شک وہ ایک ڈکٹیٹر تھا, वो अगर उसकी गवर्नमेंट को आप लेजिटिमाइज करेंगे तो शायद उस पर सवाल उठेंगे, लेकिन जो उसका दौरे हुकूमत था जो 10 साल थे वो पाकिस्तान की तरक्की के बेहतरीन सालों में शुमार किए जाते हैं।
सनती दौर कहा जाता है
वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का दौर था, और दुनिया में कोई भी मुल्क जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बगैर जो है वो तरक्की नहीं कर सकता।
मुझे सिर्फ करेक्शन कीजिएगा मेरी
जी,
उसी जमाने में अयूब खान के जमाने में, अयूब खान के जमाने में हमने जी हुजूरी शुरू की थी अमेरिका
की। वो एक अलग
करी थी।
देखिए देखिए आपने
यस और नो में बताया करी थी।
आपने माशी खुशहाली की बात की थी ना।
मैंने वो
सिर्फ बता रहा हूँ। हाँ, मैं सिर्फ माशी खुशहाली के हवाले से बात कर रहा हूँ। माशी खुशहाली के हवाले से आप बात को समझिए तो मुल्क में देखिए पूरी दुनिया में, हम कनाडा में रहते हैं, कनाडा में बेपनाह समाजी तरक्की होती है। कभी आप गौर कीजिएगा कि ये समाजी तरक्की जो होती है आखिर किस क्या वजह है इसका, जो फिनोमिना है वो बेस करता है। देखिए पूरी दुनिया में वो तमाम मालिक जिन्होंने जिनकी समाज ने तरक्की की, जहाँ पर सोशल डेवलपमेंट हुई, सोशल डेवलपमेंट होती है पैसे से, मनी से, और जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट से, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट ना हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जाती है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से जो रेवेन्यू जनरेट होता है फिर वो सोशल डेवलपमेंट
जो इमरान खान साहब ने किया था, जो इमरान साहब ने सेल्फ सस्टेन में जा रहे थे ना, वो उस वक्त वो बगैर जी हुजूरी के जा रहे थे। जिस तरीके की जी हुजूरी अयूब खान, जिस किस्म की भुट्टो साहब एक थोड़ा सा अड़े थे आखिर में जाके, और उसके अलावा अगर हम नवाज शरीफ और ये जरदारी और बेनजीर का दौर देखते रहें, या जियाउलहक का दौर देख लें, या हम इनका जो आपके यही जियाउलहक और अपना लें परवेज मुशर्रफ साहब का दौर देख लें, उस पर हमने सब ने जी हुजूरी की थी। जी हुजूरी से पैसा आ गया था, एड आ गई थी, एड मिल रही थी, आपकी डेवलपमेंट हो रही थी। इमरान खान के 3.5 साल में इसने रेमिटेंस को अपने बाजू के जोर से ऊपर किया है, अपनी कोशिशों से ऊपर किया है, अपनी पॉपुलरिटी से इशू किया है।
रेमिटेंस उसने, आप रेमिटेंस की बात कर रहे हैं, रेमिटेंस का मुल्क की एक्सपोर्ट
आ रही थी ना, वो एड थी आ रही थी।
देखिए मुल्क की जो एक्सपोर्ट है और इम्पोर्ट है
कई गुना बढ़ी थी 3.5 साल में। 40 साल का उससे अगर आप मुवाजना करें तो आपके पास रोशन मुस्तकबिल अकाउंट जिसने इंट्रोड्यूस कराया, एहसास प्रोग्राम जिसने इंट्रोड्यूस कराया, मेरे पास लिस्ट है यार। अगर हम 3.5 साल में जो काम इमरान खान ने मिसाली हुकूमत के किए हैं ना, उसको आप वो तो मैं ना मानू वाली तो कोई हमको उसको नहीं कर सकते। खोसा साहब के पास चलते हैं। खोसा साहब, इमरान खान साहब ने 3.5 साल जो हुकूमत करी है, उनके जाने से सबसे पहले तो इंडिया बहुत खुश हुआ, उनके जाने से अमेरिका बहुत खुश हुआ, उनके जाने से इसराइल बहुत खुश हुआ, और उनके जाने से ये जो आपके जितने भी, आप तो वकील हैं, आप ये मानते हैं कि इन सब पे केसेस हैं और जो एस्टेब्लिश हैं, उसके बावजूद आपके एक नून ग्रुप के जो वजीर खजाना थे वो कह रहे हैं मैं वापस आ रहा हूं, जिनके ऊपर जुर्म आयद हो चुकी है, तो ये आप क्या समझते हैं कि किस लिए हुआ ये सब?
मेरी गुजारिश में सर, सबसे पहली बात तो ये है कि माशाल्लाह हम सारे, आप खासतौर, मैं तो तालिब इल्म हूँ, आप माशाल्लाह बाशऊर हैं। अगर हम इमरान खान के हामियों को बतौर कल्ट न लें और वो ये समझें कि इसमें डिस्कशन हो सकती है तो बहुत अच्छी बात है
जी।
पहली बात ये है कि जिस तरह आसिफ जावेद साहब ने कहा है कि सोशल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीज़ें ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं एक तालिब इल्म भी हूँ फाइनेंस का बाई प्रोफेशन और मतलब एजुकेशन के हवाले से भी। अर्ज ये है कि सारी डेवलपमेंट्स जो है ना, उनकी बुनियाद और बुनियादी चीज़ जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट है। जब ह्यूमन डेवलपमेंट कहीं होती है ना, तो फिर वो उसके साथ जुड़ी हुई सारी डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक या दूसरी हैं, वो आती हैं। अब ये मसला ये है कि हम एक ऐसे दौर में पैदा हुए, फिर ऐसे दौर में पले बढ़े कि जब माशाल्लाह ही माशाल्लाह था। आई एम सॉरी, मैं कभी भी किसी भी मिलिट्री डिक्टेटर को खराज तहसीन नहीं पेश कर सकता, और अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मुझे ऐसा लगता है کہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کی تعریف کرنا ہے جس طرح کہ میں یزید کے دربار میں بیٹھ کے اس کو کہوں وہ آپ نے بھی بڑے کام کیے تھے، آپ نے پلیں بنا دی، سڑکیں بنا دی، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اب میں عرض کرتا ہوں ماشاءاللہ آصف جاوید صاحب بہت معتبر ہیں، بہت سمجھتے ہیں، لیکن میں ایوب خان کے زمانے کی بات کرتا ہوں. ایوب خان آپ کو اچھی طرح یاد ہوگا، جب کراچی کے ہم کیفیز میں، ایرانی کیفوں میں، دوسرے جڑ میں جاتے تھے تو وہاں کیا لکھا ہوا ہوتا تھا، یہاں پہ سیاسی گفتگو کرنا منع ہے.
ہاں مطلب وہ تھی نہیں، آزادی تھی نہیں.
مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں
واہ
پولیٹیکل سوشلائزیشن ہی نہ ہو تو اس ملک میں کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، نمبر ون. نمبر ٹو، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری وغیرہ لگی اس زمانے میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے ملک کو کیا دیا؟ کیونکہ جو ترقی ہے نا وہ ایک عام بندے کی ترقی سے مشروط ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، پاکستان جب ایوب خان کے دور میں تھا تو اس نے ملک کو بڑے 22 خاندان دیے، اور وہی ساری دولت جو ہے نا 22 خاندانوں کے ارد گرد گھومتی تھی. اور جناب والا، وتھ ڈیو ریسپیکٹ، ایوب خان کا سب سے بڑا تحفہ کیا تھا؟ انفارچونیٹلی 68 میں وہ جاتے ہیں اور اس کی جگہ یحیٰ خان آتا ہے، اور ایوب خان کے جانے کے مہینوں کے بعد آدھے سے زیادہ ملک آزادی حاصل کر لیتا ہے.
بالکل،
تو یہ سب سے بڑا تحفہ ہے ایوب خان کا. تو مطلب لوگوں کو مشہور کر رکھا ہے، وہ ایک دفعہ جا رہے ہیں تو بچوں نے یہ کہا اس نے چھوڑ دیا. نہیں بھائی، آپ اپنی ہسٹری سے غداری مت کرو. یہ لکھا ہوا ہے کہ کون کون سے فوجی جنرل ان کے پاس گئے تھے، انہوں نے کن پٹی پہ رکھوا کے انہوں نے ریزائن کروایا تھا.
یہ تو ہم پاس کی بات لیتے رہیں گے، لیکن اگر ہم کرنٹ افیئر میں دیکھیں، کرنٹ سینیریو میں دیکھیں کہ ابھی بھی اب جو الیکشن آنے والے ہیں، الیکشن آنے والے ہیں، ہم یہ اب ہماری قوم کو ایک میں کہتا ہوں سوچ دی ہے عمران خان صاحب نے، سیاست کے پورے ڈائنامکس چینج کر دیے ہیں انہوں نے. عمران خان صاحب نے لوگوں، بچوں بچوں کے دماغوں میں بٹھا دیا ہے کہ دیکھو امریکہ غاضب، آپ کے اوپر حکومت کرنے والا فوج اور عدلیہ، لوکلی فوج اور عدلیہ اور امریکہ، یہ تین ایلیمنٹس ایسے ہیں جو ملک کے آزادی میں خلل ڈال سکتے ہیں اور خلل ڈالتے ہیں اور ہماری ترقی کو روک رہے ہیں. اس بات کو آپ دونوں مانتے ہیں یا سنوں میں بتائیے گا مجھے.
اچھا اس سلسلے میں گزارش
پہلے پہلے بتا دیں، یہ تینوں چیزیں جو ایلیمنٹس میں نے بتائے ہیں، امریکہ، فوج کی اعلیٰ قیادت، ہم ان فوجیوں کی بات نہیں کر رہے جو بارڈر پر ہیں، وہ تو بےچارے معصوم لوگ ہیں، ہم اعلیٰ قیادت کی بات کر رہے ہیں جو ایلیٹ ہیں، سب سے بڑے منوس وہی ہیں، ان کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ جو ہیں ہمارے ملک کو جو خراب کر رہے ہیں.
قبلہ میری یار سنیں، یہ بہت پرانا ٹاپک ہے، اس پہ بے انتہا کتابیں لکھی گئی ہیں. مثال کے طور پہ
امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے.
میری یار سنیں،
عمران خان نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا، اپنی تقریروں میں بار بار باور کرایا.
آپ نے فرمایا تقریروں میں امپلیمنٹ کیا ہوگا،
نہیں،
لیکن زمین پہ کچھ نہیں.
سر کیا بات کرے، اسی کی وجہ سے تینوں کی وجہ سے نکلے، تینوں کی مداخلت سے نکلے، خود ایکسپٹ کیا ہے،
میری
سازش میں مداخلت ہوئی.
مجھے صرف ایک موقع دیں گے، صرف ایک سیکنڈ.
جی فرمائیے.
گزارش یہ ہے، اس موضوع پہ اگر آپ، جن کو بہت زیادہ شوق ہے آپ کے ناظرین کو یا سامعین کو،
جی،
ملا ملٹری الائنس، یہ بڑی مشہور مارکت الارا کتاب ہے پاکستان پہ، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ اکٹھے مل کے کیا کیا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے،
باقی جہاں تک مطلب ہے ہمارے حرز العزیز اور محبوب سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نیازی کا تعلق ہے،
واہ،
تو اس سلسلے میں میں ان کو ایک کریڈٹ ضرور دوں گا.
جی شکر ہے.
وہ یہ ہے کہ انہوں نے، حالانکہ یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کہاں سے آئے تھے اور کون ان کو لایا تھا، لیکن افسوس کی بات جو مجھے اب لگتی ہے نا عمران خان کے منہ سے، وہ پتہ کیا لگتی ہے کہ آپ نیوٹرل نہ رہیں، آپ میرے ساتھ آ جائیں. بھائی کبھی کوئی سیاست دان بھی ایسے کہتے ہیں کہ یار فوجی ہو آؤ مجھے حکومت جو ہے نا واپس دلوا دو؟ بھائی آپ سیاست دان ہیں، یو بلیو، نمبر ون. نمبر ٹو، آپ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل سازش، عمران خان نے کسی کے ساتھ کیا کیا ہے کہ جو اس نمبر آپ نے سیٹل بنا دیا کہ امریکہ نے یہ کر دیا؟ بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے. عمران خان صاحب محترم جو ہیں، ان کے اپنے جو سیکیورٹی کے جو منسٹر تھے، اور یہ خود کہتے ہیں بھائی ہم تو بائیڈن کی کال کا انتظار کر رہے ہیں، یہ تو اتنے خوش تھے. آپ جب یہ امریکہ گئے ہیں عمران خان صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ سے جب انہوں نے ملاقات کی، آپ کو پتہ ہے اس کی کیا سٹیٹمنٹ تھی؟ یہ وہاں سے کیا لے کے آئے ہیں؟ میری عرض سنیں، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے، آج کا دن انفارچونیٹلی ہمارے قوم پہ بڑی مصیبتیں گری ہیں، ان میں سے ایک میں سمجھتا ہوں 96 کا ورلڈ کپ بھی تھا، تو حضرت صاحب نے یہ فرمایا وائٹ ہاؤس میں کہ آج کا دن جو ہے یہ 96 کے ورلڈ کپ کے جیتنے سے بھی بہتر ہے کہ میں اسے ہاتھ ملا کے آیا ہوں. یہ تو آخری دم تک کہتے رہے اور کتنی صفائیاں بیان کر چکے ہیں.
معذرت کے ساتھ, یہ الفاظ عمران خان کے اس چیز کے میرا خیال ہے کہیں پہ ہمیں کسی نے, ہو سکتا آپ نے کسی سے سنے ہوں, لیکن بھارت اس کے کہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوتی کہ یہ انہوں نے کہا اپنے الفاظ سے, لیکن ان کا ہو سکتا ہے, انہوں نے کہا ایک بڑا خوشی کا دن ہے آج کا کہ ہم ایک امریکن پریزیڈنٹ سے ملے اور بات چیت ہوئی, ایسی بات چیت ہوئی کہ ون آن ون ہوئی. پلہ ہمارے پرائم منسٹر کا بھاری رہا, اسلام فوبیا کا سب سے بڑا یونائیٹڈ نیشن میں چارٹر پاس کروایا, اس کی وجہ سے ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی توہین رسالت کرے گا اب وہ الزام, اس کو سزا ملے گی. تو یہ پہلے نہیں تھا, عمران خان کے دور میں ہوا. میں جو آپ کی ٹرمپ کی جو اس کی ہوئی اس کے بارے بات کر رہا ہوں. آئیے اسی کے اوپر ہم تھوڑا سا ایک تھوڑا سیگمنٹ چینج کرتے ہیں. میں آپ کسی بھی رائے لینا چاہوں گا کہ انڈیا میں ابھی ایک درزی صاحب کا شاید مارا گیا, کنہیا لال کپور کو مارا گیا. توہین رسالت کے اوپر آپ کا وہاں پر انڈیا میں جو اس وقت ہوا ہے کیا ٹیک؟
میری گزارش,
اچھا ہمارے ساتھ کالر بھی ہے, پہلے ہم اس کی طرف چلتے ہیں, ایک کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی سر. جی
بہرحال میں آپ کا نام کیا, سوری میں آپ کا نام نہیں پتا.
آصف رضا.
آصف رضا صاحب, اصل میں بات مسئلہ یہ ہے کہ بہرحال میں کراچی سے تعلق رکھتا ہوں, نہ ہی میرا کوئی پارٹی سے تعلق ہے. ویسے پاکستانی میں آپ کو بتاؤں کہ عمران صاحب کا کارنامہ سب سے بڑا یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان میں وہ نفرت کے بیج بوئے ہیں جو کہ ہم کراچی والے 25 سال تک جو ہے نا وہ بھگتے, اور انہی کی وجہ سے بھگتے ہیں جن کو یہ لے کے آئے تھے. یعنی کہ
سر وہ تو الطاف صاحب کر کے چلے گئے تھے, اس سے زیادہ کیا نفرت کا الطاف حسین سے زیادہ کوئی بوجھ بوئے گا.
نہیں نہیں نہیں, یہ وہ انہوں نے کراچی میں بوئی تھی, انہوں نے پورے ملک میں.
سر الطاف حسین نے, الطاف حسین سے تو ابتدا ہو گئی تھی نا.
کال کی, آپ میری بات سن لیں.
جی سنائیے,
پھر میں آپ سے وہ کر لوں گا.
میں نے کریکشن کر دوں کہ تھوڑا سا یاد دلا دوں, الطاف حسین سے وہ اسٹارٹ ہو چکا تھا. آپ نے کہا نا اسٹارٹ انہیں نے کیا, تو اس کو میں کریکٹ کر رہا تھا. جی
نہیں نہیں نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کراچی میں نفرت پھیلائی, انہوں نے پورے ملک میں پھیلا دی, جو کہ ختم ہونے میں بڑا ٹائم لگے گا. آپ یہ میری بات لکھ لیجیے گا, میں دوبارہ کال کروں گا. ٹھیک ہے,
تھینک یو.
جی جہاں تک کہ آپ بتا رہے ہیں اکانومی, تو اکانومی کا بیڑا غرق جتنا انہوں نے کیا ہے وہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا. ابھی ہو ہی رہا ہے کہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اور ان کے چاہنے والے اس جھوٹ کو سچ سمجھ
کے. دیکھیں یہ مریم نواز جو آپ بول رہے ہیں نا, مریم نواز سیم چیز بول رہی
ہے. آپ پھر مجھے انٹرپٹ کرتے ہیں, میں کسی قسم پر یہ نہیں کر رہا, میں صرف عمران خان کو فوکس کر رہا ہوں.
نہیں میں بتانا چاہ رہا ہوں
کی تعریف کر رہا ہوں. دوسری بات یہ دیکھ لیں, سنیں, بحثیت کرکٹر وہ ہوں گے پاپولر, لیکن اتنا غرور آدمی, اتنا مغرور آدمی میں نے, یعنی کہ وہ لیڈر ہے ہی نہیں میری نظر, وہ پلیئر ہیں.
ٹھیک
ہے, انہوں نے اچھی کارکردگی دکھائی, ہوں گے. دوسری چیز, جتنی سپورٹ اس کو 3.5 سال فوج نے اور عدلیہ نے دی ہے کسی اور کو نہیں ملی ہے. 70 سال میں 30 سال ڈکٹیٹر کھا گئے, اور ڈکٹیٹر ہوئی کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کا ہی قصور ہے کہ جو کھلاڑی کو اٹھا کے وزیر اعظم بنا دیا اور ملک کی ایسی کر دی. آپ کس بات کی تاریخ؟
ٹھیک ہے, آپ کا, آپ کی رائے ہے, یہ آپ کی رائے ہے, اور ہمارے دونوں گیس بھی, ہاں ہاں سر آپ کی باتیں ہلا رہے
ہیں, تو یہ آپ کو پتہ چلے گا یہ کتنے بے ایمان ہیں.
تھینک یو سر.
چور ان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ ایماندار ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
یہ
پوائنٹ
کو چور ڈاکو کہتے تھے.
پوائنٹ
نہیں کہتے
سر, پوائنٹ ٹیکن آپ کا میں سمجھ گیا. یہ آپ کی اپنی رائے ہے, آپ کو ہمارے پاس دیکھیں. میرے بھائی میں آپ کو اپنی رائے نہیں تھوپ رہا, میں تو آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ فرشتے نہیں ہیں, پاکستان میں کوئی فرشتے نہیں ہیں.
پاکستانی میں یہ سمجھتا ہوں جتنی سپورٹ اس کو 3.5 سال میں ملی ہے, اس کے باوجود اس کا غرور اور اس کا تکبر ختم ہونے کا نام نہیں.
یہ پرسنالٹی چیک ہے, یہ پرسنالٹی چیک ہے. ہم ویژن کی بات کر رہے ہیں. تھینک یو سر, تھینک یو. میرا خیال ہے آپ کے, ہم ایک اور کالر کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو
ہلو. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی نہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی نے ان کو سپورٹ کیا. آرمی نے کوئی سپورٹ نہیں کیا. جو پچھلا الیکشن ہوا وہاں پہ بھی ان کو لنگڑی لولی حکومت دی ہے, 15 سے 20 سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے. خواجہ آصف رات کو ہار گئے تھے, صبح جیت گئے. ڈاکٹر نثار فیصلہ آباد سے رات کو ہار گئے, جیت گئے تھے, صبح ہار گئے. تو احمد حسین چٹھا گجرا والا تھے. یہ آرمی نے ان کو صرف بٹھایا تھا अपना यूज करने के लिए, और अभी भी ब्रिगेडियर राशिद जो है लाहौर में बैठकर इलेक्शन रिग्ड कर रहे हैं। आर्मी ने कोई सपोर्ट नहीं किया, आर्मी की मजबूरी बन गई थी इनको लाना, लेकिन बड़ी हलवरी लोली हुकूमत दी थी और जैसे ही अपना उनको मौका मिला उन्होंने वो इसको निकाल बाहर फेंक किया। जैसे बोल रहे हैं अदलिया ने इनको सपोर्ट किया, कोई सपोर्ट नहीं किया। आप नैब के केसेस देख ले, नैब का चेयरमैन ये भी न्यूट्रल्स का है, इलेक्शन कमीशन का जो चेयरमैन वो भी न्यूट्रल्स का है। आर्मी और हमारी जो अदलिया है वो बिल्कुल भी अदल पे काम नहीं कर रही है, वो न्यूट्रल्स की पिट्ठू है, न्यूट्रल्स के लिए काम करती
है।
काम नहीं करने दिया
गया
इमरान खान।
बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू मेरे भाई। एक कॉल और भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो
आसिफ भाई, मैं लाइन पे हूँ।
जी लाइन पर हैं सर, बोलें।
बहुत शुक्रिया आपका। मेरे प्यारे भाई जो दूसरा बोल कर गया ना कि उन्होंने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया,
जी
मेरा भाई कम अज कम आज की जो उनकी जो रिपोर्ट है वो पढ़ लो जो उन्होंने छोड़ी है, एक्सपोर्ट देख लो, वो घर से फैक्ट्री बना बना के चीजें नहीं बेची उसने, या उसके बाप की कोई फैक्ट्रियां नहीं थी।
बहुत अच्छी बात।
फैक्ट्रियों में लोग काम करते थे, लोगों को जॉब मिली और उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उनको उन्होंने अच्छी डील दी, समझ आई। तो एक्सपोर्ट भी उससे बढ़ती है, किसी और चीज से नहीं बढ़ी।
वेरी गुड।
और एक बात और मैं बता दूं,
जी
कहते हैं ना कि लोग पाकिस्तानी पैसे भेजते हैं, उसने ला ऐसे बनाए थे कि लोग
ठीक। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात बोली आपने, वेरी गुड। एक हमारे साथ टाइम कम है सर, हमारे साथ और भी लोग हैं, और कोई कॉल है? जी बहुत सारे कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम।
आसिफ भाई सिर्फ तीन क्वेश्चन करूंगा आपके पैनलिस्ट से।
जी
सिर्फ क्वेश्चन करूंगा, अपना तथरा नहीं करूंगा। एक तो मुझे काबिली जायजा दे दें 40 ईयर्स का और 3.5 ईयर्स का, कि इस्लाम के लिए किसने कितना काम किया।
ये हम नंबर एक हम बात करेंगे खोसा साहब से। जी आप दूसरा सवाल करें।
अच्छा दूसरा सवाल मेरा ये है कि इन पिछले 40 सालों में और 3.5 साल में किसने कितनी एक्सपोर्ट की, बरामदा किसने बढ़ाई आपकी?
ठीक है
वो क्या था? और तीसरा कि ग्रोथ रेट पिछले 40 ईयर्स में कितनी दफा ये 6% पे आया है और ये 3.5 साल में कितनी दफा 6 पे आया है, मतलब पिछली गवर्नमेंटों का। ये सिर्फ मुझे तकाबली जायजा दे दे, ये तीन क्वेश्चन है।
6% क्या है? 6% दोबारा बताइए।
ये 6% जो ग्रोथ रेट
जीडीपी ग्रोथ रेट। थैंक यू सर।
जीडीपी
जनाब खोसा साहब,
जहां तक इस्लाम की बात है ना, तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान में जो सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि बहुत जबरदस्त काम हुआ है वो हुआ है हमारे 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने ये करार पाया कि इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ बन नहीं सकेगा। और उस दौर में जो ना इस्लामिक कॉन्फ्रेंस हुई पहली दफा, उस दौर में जो ना इस्लामिक बैंक का आया हुआ, उस दौर में पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो इकट्ठे हुए हैं। तो इससे बड़ी कोई चीज हो नहीं सकती। तो
उसका नतीजा क्या निकला 40 सालों में?
उसका नतीजा यही हुआ कि जो मिलिट्री ताले आजमा थे उन्होंने उनको हटा दिया।
ठीक है। अब इंटरनेशनल फोरम पे जो इमरान खान साहब ने ये जो तौहीन रिसालत के लिए इस्लामोफोबिया का जो लॉ पास कराया,
इस सिलसिले में अगर देखें हम देखें उन्होंने जो भी काम, मुझे पता है कि उन्होंने वहां जाके तकरीर की जनरल असेंबली में, और जब ये रेजोल्यूशन मतलब पेश हुई है ना, ये बहुत पुरानी हुई है, आप उसकी हिस्ट्री भी देखें। लेकिन मैं बिल्कुल सलाम करता हूँ, ये सही है, लेकिन उससे पहले हमारे पाकिस्तान के 3 वज़राए आज़म इसी मौजू पे कर चुके हैं और उन्होंने इनिशिएट किया था,
इनिशिएट
ये फैक्ट है,
लेकिन इन्हें तकमील तक पहुंचा। जी जावेद साहब ग्रोथ रेट पे बात कर लेते हैं और जल्दी से बताते हैं एक्सपोर्ट, आपकी नजर में 3.5 साल में हमारा के तरक्की हुई है पिछले 40 साल को देखते हुए?
सर देखिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है इमरान खान के आने के बाद एक्सपोर्ट के अंदर कोई खातिर ख्वाह इजाफा नहीं हुआ। और एक्सपोर्ट आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिससे कि आप एक्सपोर्ट को बनाएंगे बढ़ाएंगे? पाकिस्तान के पास गिनी चुनी प्रोडक्ट हैं, गिनी चुनी प्रोडक्ट।
लोग नहीं रह रहे थे ना जावेद साहब, नहीं ले रहे थे लोग, इसलिए नहीं ले रहे थे कि करप्शन था। इमरान खान की हुकूमत पे आप एक प्रेसिडेंट आता है ना, आप आएंगे तो बोलोगे हाँ यार एक बंदा आया जिस पे हम यकीन कर सकते हैं। तो दुनिया के लीडर्स को यकीन था इमरान खान।
आप बुनियादी बात
ईमानदार था,
ही रहे, आप बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाने की, मुल्क एक्सपोर्ट कब बढ़ेगी जब मुल्क में पैदावार बढ़ेगी, और पैदावार कब बढ़ेगी, पानी है नहीं, बिजली है नहीं, बहरान है मुल्क के अंदर, पानी बिजली का इतना शदीद बहरान है, इस बहरान के आपको पता होना चाहिए बिजली जो है, बिजली और पानी ये इंडस्ट्री का खाम माल होते हैं, ठीक है ना, तो जब पैदावार ही नहीं बढ़ रही तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी।
साढ़े तीन साल में अभी हमने यही बताया ना कि
इस वक्त हमारी इम्पोर्ट, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त हमारी इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से दुगनी है।
ठीक, हम चले ग्रोथ रेट पर आ जाए, 6% GDP आया किसी किसी टर्म में।
देखिए ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स GDP के हवाले से हैं, ये इकोनॉमी को उस तरीके से इंटरप्रेट नहीं करते जो इकोनॉमिक सी जमान में जिस
तरह, तो अब देखें ना, अब ये तो इमरान खान की एक सक्सेस है, उसको आप
नहीं, आप ये देखिए कि
कॉलर को हम पहले ले लेते हैं। जी सलाम अलैकुम। हेलो
जी सलाम अलैकुम
भाई। जी वाह सलाम
अजीब भाई, ये कैसे लुल लोगों के लेके आ गए आप।
जी सर, नहीं नहीं आप ऐसी बात नहीं करें,
पार्लिमानी
पार्लिमानी गुफ्तगु नहीं। जी सलाम अलैकुम। हेलो, एक और कॉलर है। जी सलाम अलैकुम। हेलो,
आवाज आ रही है?
जी आवाज आ रही है। जी बोले।
जी नहीं, ये भाई साहब पता नहीं क्या बोल रहे हैं, तो अभी गवर्नमेंट किसकी है, नून लीग की है राइट, PDM की है राइट।
जी जी।
तो अभी इन्होंने रिपोर्ट दी है, ये अपना पता नहीं क्या फिलोसफी है, आई एम सॉरी टू से ये बोल रहे हैं, 26% ग्रोथ हुई है आपकी एक्सपोर्ट में राइट, और आपके रेमिटेंसेज में अपना जो है वो 50% एक्सपोर्ट हुई है, ये गवर्नमेंट बढ़ा रही है।
थैंक यू वेरी मच, टाइम खत्म हो रहा है, मैं वरना और बातचीत आपसे करता यहाँ पर आज, क्योंकि देखें ये हमारे मुल्क के अंदर जाहिर बात है सब इंडिपेंडेंट हैं, आजाद हैं, सबका अपना अपना नजरिया है, मेरा अपना एक नजरिया है, मैं उसके हवाले से बात कर रहा हूँ। जावेद साहब हैं, खोसा साहब हैं, और जो हमारे जितने भी मोहतरम कॉलर्स थे, मैं उनका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, अगर कोई गलती मुझसे हो गई हो तो मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तो आप लोगों ने कॉल करी, पार्टिसिपेट किया, करें पार्टिसिपेट, डेफिनेटली आपका अपना मौकफ है, लेकिन दूसरे का मौकफ भी सुने आप। आपको एक जैसे इस वक्त हमारी जो प्राइम मिनिस्टर की भतीजी साहिबा हैं मरियम नवाज, बोले चले जा रही हैं, बोले चले जा रही हैं, ना सर ना पैर ना फैक्ट्स, वो ना करें कि उसने ये किया, उसके साथ ये था। आप एक्चुअल इन ग्राउंड रियलिटी देखें और उसमें देखें कि क्या पाया और क्या खोया। भारत एनीवे, यहां पर हम अपना प्रोग्राम खत्म करते हैं, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। अपने दोनों पैनल से बहुत दिल शुक्रगुजार हैं, इंशाल्लाह इनको गाय बगाय तकलीफ देते रहेंगे। यहां पर सैयद आसिफ रजा को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज नासिर।
The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
नागहानी और परेशानी से बचना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप घर के तमाम कमरे और सोने के तमाम इलाकों से बाहर घर के हर लेवल पर वर्किंग स्मोक अलार्म्स हों। आज और हर महीने घर के तमाम स्मोक अलार्म्स यानी धुएं के अलार्म्स की जांच करें। अलार्म्स पर लगे बटन को दबाकर चेक करें कि बीप आ रही है कि नहीं, वो काम कर रहा है कि नहीं। आपकी एहतियात और स्मोक अलार्म्स जान बचाते हैं। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से एक पैगाम।
पंजाब टीवी पेश करते ने कनाडा डे मेला 2022, जिस विच आ रहे ने नछत्तर किल, जस बाजवा, सिंगा, रुपिंदर हांडा, हर्फ चीमा, लवली निर्माण, प्रवीण पाटा, सत्कार संधु, खान साहब, द लैंडर्स, अते विरासत संधु। 1 July 150 क्वीन स्ट्रीट बोल्टन विखे कनाडा डे मेला, फ्री एंट्री फ्री पार्किंग, आओ ते आनंद माणो। जानकारी ले कॉल करो 416-312-1111। कनाडा डे मेला 1 July।
आदमी बुलबुला है पानी का,
द पोएट, द राइटर, द लेजेंड गुलजार, लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स।
दिल ढूंढता
नाम
Friday, July 15th at prestigious Roy Thompson Hall. Once in a lifetime experience. Don't miss it. Gulzars, Ijazat.
Aur pani ki behti sathe par.
Kari jinnami sona hove,
ਬੋਡੀ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ ਜੱਚਦਾ।
ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਡੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਫਿਰ ਬਣੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈੱਟ, ਸੋਫਾ ਸੈੱਟ, ਮੈਟ੍ਰੇਸਿਸ, ਡਾਇਨਿੰਗ ਟੇਬਲ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮਸ, ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ